आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय है 11 और श्लोक संख्या 4 आई गई। वृत्रासुर के दिव्य गुण। देवताओं के साथ असुरों की लड़ाई हो रही है और उसमें युद्ध के नियम के अनुसार राक्षसों को देवताओं को कैसे सामना करना है उसके बारे में वृत्रासुर सूचना दे रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनता नहीं क्योंकि राक्षसी धर्म से विरुद्ध है, जबकि ये तो भक्त है। तो मूर्खों को उपदेश देना भयंकर साबित होता है। ये सब छोड़ के भाग गए, वृत्रासुर अकेला रहेगा, फिर भी वो अपनी पूर्ण ताकत से देवताओं का सामना करने लगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम वह उच्चरीते ही मातुः धावद्भिः पृष्ठतः हतैः न हि भीतवदः श्लाघ्यः न स्वर्ग्यः शूरमानिनम्। किं वै उच्चरितैः मातु धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवदः श्लाघ्यो न स्वर्गः सुरमानिनाम्। किं क्या लाभ वह तुम्हारे लिए उच्चरितैः ही मलमूत्र के समान मातुः माता का धावत भी ही भागते हुए पुष्टतः पीछे से हतैः ही मारा न नहीं निश्चय निश्चय ही भीतवदः भयभीत पुरुष का वध श्लाघ्यः प्रशंसनीय न तो स्वर्ग स्वर्गलोक की प्राप्ति सुरमानिनाम सुरवीरों का। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ, निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है न ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वृत्रासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्षों को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं, वह विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में ही अपने प्राण गंवा देने के लिए सन्मुख होकर लड़ता है। यही वीरता है। पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। यह सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। वृत्रासुर ने असुरों असुर सही नहीं कहो कि तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। मां के उदर से कायर पुत्र तथा मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्रासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ही उपमा तुलसीदास ने दी है जिसमें पुत्र तथा मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में वीर्य तथा मूत्र दोनों ही जननेन्द्रियों से निकलते हैं, किंतु वीर्य से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता। अतः यदि पुत्र न तो वीर है न भक्त, तो ऐसा पुत्र पुत्र नहीं मूत्र ही है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी कथन कि को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ैव केवलम्। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न तो भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उसकी काणी आंख के समान है जो केवल पीड़ाओं पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुल मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतापद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किं वा उच्चरितैः मातृ धावद्भिः पृष्ठतः तैः न हि भीतवतः श्लाघ्यो न स्वर्गं न सुरनामानाम्। हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने में क्या लाभ होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करें। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है न ही इसे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये नीति शास्त्र के अनुसार युद्ध विद्या जो है उसमें भी युद्ध के कानून होते हैं। ये कलयुग में कोई कानून का पालन नहीं करता और भारत की तो ये धरोहर है। तो जब भारत पाकिस्तान इत्यादि में वैसे भी कुछ छमकला होता है, कुछ ना कुछ हर रोज क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, तो युद्ध के नियम अनुसार भारत भंग नहीं करता, क्योंकि ये विरासत युद्ध की कला पहले से ही रग में है कि शत्रु पर पीछे से वार करना आततायन कहलाता है। पीछे से वार करना आततायन यानी कि जो हल्ला करता है तो हल्ला करने वाला गुनेगार होता है। सुरक्षा के लिए तो सावधानी और उसका प्रतिकार कार्य है, लेकिन हल्ला करना, आक्रामक रहना, वो गुनाह कहलाता है। और वो भी अंधेरे में या चोरी छुपकी से बहादुरी न बताकर कायरता से हमला करना वो निंदनीय कहलाता है। बार पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो यही है। ये नीति शास्त्र के अनुसार युद्ध कलाएं और जो अपनी चरित्र की जो गरिमा है, जो वैदिक चरित्र से जीने का अपनी लहू में है, तो आक्रामक न बनकर प्रतिकारक शक्ति तो धरानी ही चाहिए। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रभुपाद जी तादृश करते हैं और नीति के अनुसार चाणक्य नीति और क्या कहते हैं सैन्य यानी कि द्रोण नीति भी कहलाती है। द्रोणाचार्य महाभारत में आप देखो कि कितना, यदि शूरवीरता जो बतानी है तो दिन में बताओ, रात को मित्र हो जाओ। साथ में भोजन करते थे पांडव और कौरव, दिन में लड़ते थे और लड़ने में भी किसी ने यदि शूरवीरता बताई है तो निखालसता से, बिल्कुल कोई गलत काम किए बिना या गलत शब्द बोले बिना, कोई ऐसा विसंवाद यानी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, निखालसता से सराहना करनी होती है। तो ये युद्ध भी एक प्रकार का जीवन का खेल है। यदि योग्यता बतानी है तो योग्यता में स्पर्धा तो होती ही है। तो युद्ध के नीति नियमों के अनुसार ये करना। कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना किया कि तू सुत पुत्र है, यानी कि तेरे में ये संस्कार नहीं है जो पांडवों में है और कौरव में भी तो होने ही चाहिए, पर लेकिन तू कहां से आया। तो कर्ण उसका प्रतिकार नहीं कर सका, लेकिन कपटी दुर्योधन ने किया। यदि ये सुत पुत्र है तो क्या हुआ, मैं अंग देश का उसको राजा बना देता हूं, यानी कि ये क्षत्रिय की उपमा ये कृत्रिम रूप से जब दी जाती है तो ये धर्मयुद्ध नहीं रहता। आजकल धर्मयुद्ध तो मुसलमान और हिंदू में कहलाता है, लेकिन कोई भी हो, धर्मयुद्ध यानी कि धर्म की जो नीति है, इनके जो बनाए हुए सारे चरित्र और शूरवीरता, युद्धे चापलायनम न चापलायन, पलायन होना नहीं, पलायन यानी भाग जाना। तो कोई कहेगा कि अरे कृष्ण भगवान भी तो रण छोड़ करके भाग गए थे। तो जो पीछे पड़ रहा है तो उसका कोई जरासंध ने उसका पीछा क्यों नहीं किया। जो भागा तो कायरता का प्रतीक कहलाता है। अरे कायर को पीछे से मारने से क्या लाभ। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो महाभारत में आ रहे हैं वो युद्ध में भी आचार संहिता बताता है। संहिता यानी कि जो नियम है उसका संग्रह, आचार संहिता तो अपने आचरण में कैसे आनी चाहिए। वैष्णव चरित्र तो सबसे ऊपर कहलाता है, उसकी भी आचार संहिता है। वैष्णव के आचार कैसे होने चाहिए, जो मन से, वचन से और कर्म से भी किसी के प्रति ये प्रत्याघात नहीं करे, हाँ वो वैष्णव होता है। इस किसी के बारे में गलत सोचना भी अपराध है, क्योंकि ये सोच मन में होती है, है? और यदि वो कपटी आदमी है तो वो अपनी बुद्धि का भी इसको कैसे निपटाने के लिए सोचता होगा, यानी कि बुद्धि पूर्वक भी कपट को आगे बढ़ावा देता है, तो वो भी गलत बताया। तो कोई ऐसा आचरण करे तो उसकी बात ही कहा, आचरण वाचा और मन दोनों से बहुत गहरा प्रभाव है, उससे व्यक्ति का चरित्र पता चलता है, वैष्णव चरित्र नहीं। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना भक्त स्वीकारते हैं, अपना सखा स्वीकारते हैं, तब उसके पास ऐसी अपेक्षा तो नहीं रखी जाती कि पहले जो वो भागने की कोशिश करता था कि भीख मांगू वो अच्छा है, बल्कि मेरे भाइयों पर ये प्रहार करो तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है, आचार संहिता का वो पालन नहीं कहलाता, इसीलिए भगवान ने उसे डांटा। तो ये देहात्म भान के कारण तो ऐसा सोचता है, वो कायरों को भी शोभा नहीं देता, तो तेरे जैसे सुरवीर की तो बात ही क्या। तो ये वृत्रासुर देखो उसका मन कितना स्थिर है, एक ऐसा विचित्र शरीर मिला है, इतना भयानक है, इतना बड़ा है, जब इंद्र भी उसको देखकर थर थर कांपता है, ऐसे वृत्रासुर चित्रकेतु ही तो था ना, तो उसकी भक्ति का जो प्रभाव है तो अपने सारे ये असुर के जो कार्य होते हैं उससे भी वो बढ़कर आगे बढ़ता है। तो ऐसे देवताओं के साथ जो सत्वगुण में स्थिर होने वाले हैं, लेकिन जब मौका आया तो वृत्रासुर ने उनको भी सुना दिया कि ये क्या कर रहे हो, ये असुर तो मूलमूत्र के समान है, लेकिन आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं, कोई मलमूत्र के पीछे पड़ता है क्या, एक बार बाहर निकाल दिया, कोई पीछे नहीं देखता कि इसका क्या होगा। तो ये चरित्र पर जाता है, देवताओं आपको भी शर्मानी चाहिए कि जो भागते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते हुए उसके पीछे तुम वार कर रहे हो, तो वो तो असुर का काम है, जो जो वैदिक संस्कृति के बाहर है इन लोगों का काम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तो निकम्मे है ही, ये तो निकम्मे है। तो वृत्रासुर की जो भक्ति है, भक्ति का प्रमाण उसके शब्दों से पता चलता है, नहीं तो ऐसी बातें क्यों निकलती। भक्त हमेशा आत्मा होता है, शरीर नहीं होता है, ये बारंबार कहा जाता है, शरीर तो साधन है, साधन का सदुपयोग आचार संहिता के लिए है। ऐसे ही कि ओ हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, चलो करो जो कुछ करना है, गलत हो तो गलत करो। भारत देश में आचार संहिता का इतना उल्लंघन हो रहा है, इतना उल्लंघन हो रहा है कि कोई भी अपने मन में जो आया बकवास कर देता है, और उसकी पुष्टि करने के लिए उसका पक्ष पूरे पूरा तैयार हो जाता है। ये देश का क्या होगा, या आप हर रोज अखबार में पढ़ते होंगे क्या तमाशा हो रहा है। तो ये जो आचार संहिता है जो वैष्णव को शोभा देती है, ऐसे वृत्रासुर से के मुख में जब सुनकर हमें सत्य का परिचय होता है। वैसे भी तो राक्षसों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पीठ पीछे ही हुई थी। आगे सब मनुष्य देख, लेकिन ब्रह्मा जी की तो आंख पीछे भी थी, अपनी आंख नहीं, उसके चार मत्ते थे तो देखते थे, पर लेकिन सामने उन्होंने सबको अपना अपना 84 लाख योनियों में जो जो शरीर थे तो वो देना शुरू कर दिया। ये पीछे यक्ष और राक्षस जीव अपनी सुषुप्त अवस्था में नहीं, लेकिन उसका देह अभी तक योनिया प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन जीव तो थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी पक्षपात कर रहे हैं, उनकी आगे जो है इनको ही पहले योनिया दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो अंदर अंदर कांसाफूसी होती है, कानाफूसी होती है कि उसको मारो, और दूसरों ने कहा उसको खाओ। ब्रह्मा जी पर आक्रमण करते हैं, तो ब्रह्मा जी के अरे मैं तो तेरा पिता हूं, और तू हमें ही मारोगे तो तुम्हें कौन देगा, तो क्या आप पक्षपात करते हैं। अरे भाई पक्षपात नहीं, ये क्रम होता है। दसवीं प्रकृति में देवता और दानव दोनों की हुई है, वो आगे से हुई है और एक पीछे से हुई, इतना ही फर्क है। लेकिन पीछे तो अधर्म होता है, यानी कि वो चरित्र इनके शरीर में भी तो आने चाहिए ना। व्यक्ति का जो सामने दिखाई देने वाला जो भाग है, क्योंकि आंख भी हमें सामने ही दे, पीछे आंख होती तो भगवान ने क्यों नहीं दी। ब्रह्मा जी के तो पीछे मुख था तो दो आंख से तो देख सकते थे, साइड में भी दे सकते, एक आंख है चार दिशा में देखनी चाहिए। ये जीव है, भगवान ने उसको तीसरी आंख नहीं दी थी जो शिव जी शिव परिवार ने सबको दी है, वो तो आध्यात्मिक आंखें होती है, हमें नहीं दी है। फिर भी अंदर से कोई कहता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना अंदर मस्तिष्क में, उसको तीसरी आंख बोली जाती है। ऐसा तमाशा करते नहीं, नहीं, अंतर सूज भगवान की भक्ति और उसमें जो अनुभूति होती है जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि वो कौन है, वो तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख खोलने के लिए ही तो शास्त्र है, नहीं तो आवश्यकता क्या थी। जिसकी तीसरी आंख खुलती नहीं है वो लोग उसको परिकथा मानते हैं। ऐसे जड़वादी लोगों की जो संस्कृति है वो संस्कृति नहीं है, विकृति है। संस्कृति तो ये देश की धरोहर है, पाश्चात्य कोई संस्कृति नहीं है। तो सत असत का परिचय करने के लिए भी देवताओं और दानवों की सृष्टि बताइए, दानव असत का ही परिचय कर सकते हैं या उनसे करवाया जाता है, सत का परिचय नहीं करवाता। वो तो भक्त हो तभी ही प्राप्त होता है, दानव में भी भक्त हो सकते हैं प्रहलाद बलि महाराज जैसे। तो यहां जो नीति नियम है तो ये नीति नियम का मूल उद्देश्य भगवान ने बनाया है और संबंध में पिता यानी कि पितृ मातृ भातृ दुहितृ ये सब त्र से जुड़े हैं त्राणाय त्राण के लिए परित्राण के लिए परित्राण यानी और त्राण और परित्राण में क्या फर्क है त्राण यानी छुटकारा करना परित्राण है बारंबार छुटकारा करना छुटकारे की ही तो आवश्यकता होती है तो सब तरह से जुड़े हैं यानी कि कुछ न कुछ ये संबंध विशिष्ट कार्य के लिए है जीव का ये अज्ञानता से छुटकारा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पू नाम का नरक इनमें से तारण करने वाले को पुत्र कहा जाता है जो तारण करना नहीं जाता अपने पितरों का तो वो मूत्र के समान बताया है लेकिन पितृ इन लोगों का भी कर्तव्य बताया है जब आदर्श गृहस्थाश्रम में देखते हैं तो पितरों का धर्म बताया है पितरों में पितृ मातृ सब आते हैं क्या कि आने वाले जीव उनका बेटा हो या बेटी इनका ये भौतिकता की से जो अज्ञानता प्राप्त हुई है उससे छुटकारा देना है उनको मोक्ष मार्ग पे ले जाने के लिए ये मनुष्य जन्म में एकमात्र उपाय जो है तो उसका सदुपयोग करना कि त्राण करो छुटकारा करो जो माता पिता ये पवित्र कार्य के लिए भगवान की ओर से जो करने वाला है वो नहीं करता तो वो पिता भी नहीं कहलाता भागवत में नहीं कहा गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् माता पिता न सस्यात् यद्यपि न मोचेत समुपेत्य मृत्यु मृत्यु के मुख में से बचाने के लिए जिनकी कोई तैयारी नहीं है तो उसको गुरु बनने की भी आवश्यकता नहीं है पिता बनने की भी आवश्यकता नहीं माता बनने की या स्वजन बनने की भी आवश्यकता नहीं बताई तो ये संस्कृति की धरोहर है ये भगवान की भक्ति के लिए एकमात्र जीव का मूल स्वरूप जो है वो ऐसे भौतिकता से छुटकारा पाने के लिए चाहे कितनी भी गर्हित बात गर्ता वाली बात हो तो ऐसे अनुसार ये राक्षसों का जन्म हुआ है जो विष्टा के समान बताए गए हैं और देवता जो इतने उदात्त विचारों से भगवान की सेवा के लिए निर्मित हुए हैं तो उन लोगों को बहक जाने से क्या फायदा है भागते हुए इसके पीछे इनको मारने का प्रयत्न करना वो आचार संहिता से विरुद्ध है क्योंकि हेतु चला जाता जबकि एक विशुद्ध भक्त वृत्रासुर के शरीर में जो है वो कितना सजग है अकेला पड़ गया है फिर भी डांट मारता है अकेला पड़ गया है फिर भी डांट मारता है और दोनों को डांट मारता है भागने वाले को और उसका पीछा करने वाले को दोनों को क्योंकि ये ठीक नहीं है कहने मर्द हो तो सामने आ जाओ तो ऐसी बात है सब ऐसी चुनौती देकर बैठा है तो वो सही है तो ये उत्तम चरित्र वृत्रासुर का जो दिव्यता वाला कहलाता है क्योंकि सारा लक्ष्य भगवान की ओर का है इनकी भक्ति की ओर का है जो कभी नहीं भूलता इसलिए वो पार्वती के श्राप से भी नहीं डरा है और शिव जी जानते हैं तीसरी आंख वाले हैं कहे पार्वती उसको शाप मत दे, वह भक्त है, फिर भी ना समझ रहती है, भक्त है तो क्या हो गया, भक्त हो तो क्या हो गया। कई बार प्रश्न करते हैं, ये चौथे स्कंद में जो अपरिपक्व दशा बताते हैं, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, भगवान में आस्था वाला हो, या भक्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता हो, पर लेकिन पूर्व संयोग वशात उसका जो स्वभाव है वो फिर से तामसिक और राजसिक न करने को कर बैठता है, तो क्या यमराज उसे छोड़ते हैं? ना के तिलक गले माला, लेकिन हो तो कली चेला, तो क्या यमराज उसको छोड़ेंगे? ना, तो बताए इसको भी पीटते हैं, मौका मिला था क्यों गवा दिया, चल जा एक दो खा ले बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन सजा तो कुछ ना कुछ होगी ही होगी। तो श्रीमद् भागवत में ये भगवान की ओर कैसे बढ़े वो न्याय सूत्र भी दिया गया है कि ये न्याय है, बाकी का अन्याय है। जब भगवान का भक्त है, भगवान की ही तरफदारी करता है, तो वो सचमुच न्याय बताया, नहीं तो सब जगह अन्याय है। दो पक्ष में लड़े, दो पक्ष लड़ता है, लेकिन भगवान बीच में नहीं है तो न्याय की बात होती ही नहीं। कोई कहता है कि न्याय मेरे पक्ष में है, कोई कहता है न्याय नहीं नहीं न्याय तो हमेशा भगवान के पक्ष में होता है, तो भक्त कौन है? तो आजकल के जो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, यदि कोई भक्त को सजा मिलती है, सजा मिलती है, तो अरे भक्त होते ही उसे सजा मिलती है, ये कौन सा न्याय है? तो कोई पूर्व संयोग का उसका अभी कटा नहीं होगा, लेकिन भविष्य का तो उसने कुछ बनाया ही नहीं, तो न्याय तो वहां है, तो थोड़ा सहन करने में क्या बात है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षणमान भुंजानम एवात्मक कृतम विपाकम, ये विपाक बाकी रहा है। भक्त यूं समझ रहा है कि मुझे जो सजा मिल रही है तो विपाक के कारण बाकी रहा होगा। ओ भगवान चलो इतना ही दिया ना, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपको अभी छोड़ने की कोई संभावना नहीं, विपाक हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में भय भी जिसका नहीं रहता है, तब भगवान पर कितनी दृढ़ श्रद्धा है वो उसका पता चला है। नारायणो परो व्यक्तात् न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापि नरकेषु तुल्यार्थ एव दर्शिना, स्वर्ग और नरक में भी वो एक सरिखा मानेगा। स्वर्ग क्या है? काम चलाओ। नरक क्या है? वो भी काम चलाओ। क्या बलि महाराज को नरक में जाने में कोई परेशानी हुई थी क्या? तो क्या नरक में भगवान नहीं है ना? है ना, जो ना उनके चौकीदार के रूप में आ गए पाताल लोक। तो स्वर्गे वा निरये, निरये यानी कि नरक, दोनों समान होता है, क्योंकि दोनों काम चलाव है। ये शरीर भी काम चलाव है, काम चलाव चीजों से एक दूसरे की तुलना नहीं होती। तुमने ये टीवी बनाया है, कितने साल की गारंटी, तो कह पाए 2 साल की गारंटी है, चलेगा ज्यादा से ज्यादा 10 साल, फिर तो कवाड़े में जाएगा, है ना। तो काम चलाओ स्थिति स्वर्ग की और नरक की दोनों की है, तो स्थिरता कहां है, फिर भी लड़ना पड़ता है, प्रतिकारक भाव, तो वो तो संस्कार द्वारा ही संचालित होना चाहिए। चलो ये देखो, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके भारत का है, आज तक भारत ने आक्रमण क्यों नहीं किया, मेरा है तो मेरा ले लो, मेरा अधिकार है। अभी डांट मारते हैं पर जाते नहीं, डांट मारते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाते हैं पर जाते नहीं, देखे। तो ये सहिष्णुता उत्तम गुण है जो भक्त में होता है। ये चाहे कितना ही समाज विकृत करने की कोशिश करने वाले आधुनिक नेता हो, खास करके ये विपक्षी दल हैं, कोई आचार संहिता वो सब भंग कर चुके हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा करेंगे। तो कम से कम एक चाय वाला वृत्रासुर के समक्ष लड़ रहा है सही ना, कहां से कहां। तो ये कुछ ना कुछ हम सोचते हैं कि कहा एक विशुद्ध भक्त की तो बात नहीं है, लेकिन समाज में ऐसे क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, जो चाय वाला तो शूद्र का काम है, तो शूद्र से क्षत्रिय नहीं बन सकते, मुत्सद्दी नहीं बन सकते, पॉलिटिशियन नहीं बन सकते क्या। पर फिर भी आचार संहिता बहुत सुरक्षित अपने आप को तो बनाए रहेगी। हम व्यर्थ थोड़ा जाएंगे, तो जो कुछ कर, तो ऐसी ऐसी भावना से हम ये समझ सकते हैं कि देवताओं भी गफलत में पहुंच जाते हैं, नकर नकर बैठते हैं। इंद्र को तो पूछो ही मत, गलतियों का सरदार है तो इनको भी कौन बोध देगा, बोध देगा तो वृत्रासुर जैसा ही देगा, अभी आएगा। अरे क्या अब ये चरित्र देखने से हमें काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ऐसा चरित्र कितना आवश्यक है। तो किसी को कोई प्रश्न है, चर्चा का विषय है, नहीं गुण गुण कर्म विभाग शह। हाँ तो जाति से क्या फायदा है, ये जातिवाद थोड़ा है।
गुण से हम कुछ भी बन सकते हैं, मान लीजिए हम कोई क्षुद्र में आया और वो गुण अर्जित करके ब्राह्मण भी बन सकता है।
नहीं धाम में तो कोई जाति होती नहीं, भक्त की कोई जाति होती है, जो यहां मना करते हैं तो वहां क्यों, यहां कोई भेदभाव होता है क्या। नहीं गलत सोच, की दिशा में तो जाना ही नहीं चाहिए। ये अमेरिकी वैष्णव है, ये हिंदू भक्त है, क्या तमाशा। भक्त की कोई जाति नहीं होती, न तो पुरुष स्त्री भक्त में भेद हो सकता है। तो अन्य स्थलों से आए हुए भक्त के क्या है? ये जनता का विप्लव, सामान्य जनता के हृदय में पाप भरा है, उसके ये पाप पर विप्लव पैदा करना, चैलेंज देना भागवत धर्म। श्रीमद् भागवतम क्या कहा है? पापी हृदय में जो क्या बलवा को क्या कहते हैं है? उपद्रव, पापी हृदय हमेशा उपद्रवी हृदय होता है। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्ध बद पपी नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधव। तो ये सत्य होता है हमारे जीवन में, वो ही तो उतारना है। श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा नहीं तो क्यों दी जाती है? पापी हृदय में चैलेंज देना भक्तों का काम है, डरना नहीं। आप शराबी को क्यों उपदेश नहीं देते? उपदेशम मूर्खाणाम सर्पाणाम भयंकर। मूर्खों को यानी कि उपदेश देना सर्प से भी ज्यादा भयंकर, क्योंकि वो लोग ऐसे होते। आप कुछ शराबी के पास जाओगे, उसको हरे कृष्ण महा, वो तो आपको ऐसी सुनाएगा जो बहुत सारी शास्त्र की बात है। उसकी फिलसफी बहुत बढ़ जाती है उस समय। तुलसीदास का दोहे भी सुना देगा। प्रभुपाद जी यहां तुलसीदास को कोट करते हैं, देखो ऐसी उपमा वो जो मूत्र के बराबर है ना, तो उसके तुलसीदास ने दी है, जिसमें पुत्र तथा मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्द में वीर्य तथा मूत्र दोनों ही जननेन्द्रियों से निकलते हैं, किंतु वीर्य से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता, अभी तो खाद भी नहीं बनता। अतः यदि पुत्र न तो वीर है न भक्त, तो ऐसा पुत्र पुत्र नहीं मूत्र ही है। इस प्रकार चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ितय केवलम्। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न तो भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आग के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता भी नहीं करती है, फिर भी लगाव होता है। नाम रखा है कमल नयनन, है तो क्या देखो हे काना, लेकिन नाम रखा है कमल नयन। कोई पर्सनल नहीं है ठीक, लेकिन प्रभुपाद जी है तो काना क्या फायदा और श्री प्रभुपाद की